Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
नमस्कार. मार्केट मंत्र में आज के अंक में आप सभी का स्वागत है. इस कार्यक्रम में हम आपके लिए देश और दुनिया से चुनी हुई आर्थिक कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं और हमारे साथ इन खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एसपी शर्मा जी. एसपी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
वार्म वेलकम.
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है राजेश.
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस एंड मार्जिनली डाउन. Sensex closes at 79,897. Nifty settles at 24,316. India will become the third largest economy in near future, says Prime Minister Narendra Modi. And resident individuals can open foreign currency account in International Financial Services Center under liberalized remittance scheme, says the RBI.
घरेलू शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 79,897 अंक पर और निफ्टी 24,316 पर पहुंचा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. और भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, भारतीय नागरिकों को उदारीकृत धन प्रेषण योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति. भारतीय घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी में आज 0.03% की गिरावट आई और दोनों सूचकांक सुबह बढ़त के साथ खुलने के बाद कारोबार के अंत में करीब करीब सपाट रहते हुए बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 27 अंक यानी कि 0.03% की गिरावट के साथ 79,897 अंक पर जाकर बंद हुआ. इसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी कारोबार बंद होते समय 9 अंक यानी कि 0.03% नीचे आकर 24,316 पर पहुंच गया. बीएससी के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप में 0.34% की बढ़त देखी गई जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.57% की तेजी आई.
इंडियन इक्विटी बेंचमार्क इंडिसेस सेंसेक्स एंड निफ्टी ड्रॉप्ड 0.03%. हेंस एंडेड फ्लैट आफ्टर ओपनिंग हाई टुडे. The BSE Sensex slid 27 points or 0.03% to close at 79,897. Similarly, the NSE Nifty shed 9 points or 0.03% to close at 24,316. In the NSE Nifty Index, 144 companies hit their 52-week high, 8 hit their 52-week low. In the broader market at the BSE, the mid-cap index was up by 0.34%, while the small-cap index was also rose by 0.57%. 15 out of 30 companies registered gains in the Sensex index. The top three gainers today were ITC 1.64%, Tata Motors 1.52%, and Asian Paints 0.93%. Conversely, the three major laggards were Bajaj Finance 1.48%, Mahindra & Mahindra 1.24%, and NTPC 1.14%. In sectoral indices at the BSE, 15 out of 20 sectors logged gains. The top three gainers were oil and gas 1.68%, energy 1.2%, and services 1.13%. The three major laggards were Realty 1.41%, Auto 0.43%, and Power 0.39%. The overall market breadth at the BSE was positive. Out of 4,023 companies, the shares of 2,172 companies advanced, 1,739 declined and 112 remained unchanged.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रूपया 5 पैसा कमजोर होकर 83 रूपये और 56 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। रूपया आज 83 रूपये और 49 पैसे पर खुला था, लेकिन सत्र के दौरान अमरीकी डॉलर के मुकाबले 83 रूपये और 59 पैसे के निचले स्तर पर पहुंच गया था। एसपी, एक बार फिर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि कल मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमने देखी थी, आज करीब करीब सपाट ही रहा लेकिन हल्की गिरावट देखने को मिली, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्या आंकते हैं आप इस तरह मार्केट को?
देखिए, ये जो गिरावट है मैं इसको गिरावट तो नहीं कहूंगा, ये खाली एक मुनाफा वसूली होती है क्योंकि अभी मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हैं। मार्केट्स को हम देख रहे हैं कि वो हरेक 5-7-10 दिन के बाद न्यू हाईज फिर बनाती हैं, थोड़ी गिरावट आती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद फिर न्यू हाई बनता है। तो मार्केट में इस तरीके का एक ये चलन चला हुआ है कि क्योंकि सपोर्ट मार्केट को बहुत है, अवर इकोनॉमी एज मेंशन्ड मेनी टाइम्स के बहुत बड़े से बिहेव कर रही है, बहुत अच्छे से हमने ग्रोथ हासिल की है, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं चाहे वो आईआईपी नंबर्स हैं, चाहे वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर एक्सपोर्ट्स ट्रैजेक्टरी है, सभी बहुत ही अच्छी गति से प्रभावहीन बने हुए हैं। और दूसरा जो है जो ये ट्रैजेक्टरी है, जो ये इंडिकेटर्स हैं, इनकी सपोर्ट से जो हमारा जीडीपी का जो अभी पीछे हमारा जो पिछले साल का पिछले वर्ष का जो वित्त वर्ष का जो जीडीपी था वो 8.2% के ऊपर ग्रो किया, जो एक बहुत अच्छी सपोर्ट देता है सभी इंडिकेटर्स को कुल मिला के एक ऐसी कंसोलिडेशन के हमारा जीडीपी 8% के दायरे में ही बिहेव कर रहा है, 8% की ग्रोथ हमें दिखा रहा है। अगर हम एवरेज ग्रोथ देखें पोस्ट कोविड ईयर्स में, दैट इज 8%, 9.7 देन 7% एंड 8.2%, सो एवरेज बिकम्स एट अराउंड 8%। तो एक जो ट्रैजेक्टरी है, जो इंडिकेटर्स हैं, जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, जो इकोनॉमिक एक प्रभाव बना हुआ है हमारा पूरा विश्व में कि इंडिया इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज, वो बहुत तेज गति से इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे कि मार्केट्स में एक मोमेंटम बना हुआ है, मार्केट्स में जो पार्टिसिपेशन है वो रिटेलर्स की भी बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेशन है और एक सॉलिड बेस के ऊपर मार्केट्स जो है आगे बिहेव कर रहे हैं।
तो छोटे निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटा निवेशक हमेशा फायदे के लिए ही ज्यादा सोचता है बजाय इसके कि लंबे समय तक वो निवेश करके रखे, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं वो किस तरह इंडिकेट करते हैं?
देखिए, मौजूदा हालात में छोटे निवेशक जो है उनको सोच समझ के चलना चाहिए पहले तो, क्योंकि मार्केट्स में हमेशा एक इनफॉर्मल डिसीजन होने चाहिए, वो अच्छे से कंसल्ट करके जो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स हैं उनको कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट करें। और दूसरा जो मार्केट वॉलेटिलिटी है, कई बार मार्केट्स में थोड़ा गिरावट आती है, बहुत तेज गति से गिरावट आती है, कई बार निफ्टी जो है 100-150-200 पॉइंट्स का सीधे तौर पे एक करेक्शन दिखाता है, तो उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। कई बार रिटेलर सोचते हैं कि अब शायद मार्केट्स जो है मार्केट्स का जो कई सोचते हैं कि ये तो खेल खत्म हो गया जी, अब तो मार्केट्स बहुत ऊपर गई हुई थी, अब तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो हम भी तो वैसा नहीं करना चाहिए, पैनिक नहीं होना है मार्केट में। अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है दे शुड रिमेन इन्वेस्टेड, उनका इन्वेस्टमेंट बने रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स में कभी भी ऐसा नहीं होता कि विदाउट एनी रीजन मार्केट्स आपको डिसेलरेशन दिखा देंगे और मार्केट्स के बहुत ही लो करेक्शंस में, डीप करेक्शंस में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, उसके कुछ रीजंस होते हैं। कई बार पैनिक क्रिएट होता है तो उसको थोड़ा पेशेंस के साथ डील करने की जरूरत होती है। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो मार्केट में स्टेबल रहे, वो जो वॉलेटिलिटी होती है, जो पैनिक क्रिएट्स होते हैं कई बार कुछ, क्योंकि इंटरनेशनल नाउ वी आर नॉट इन आइसोलेशन, वी आर कनेक्टेड, सिग्निफिकेंटली कनेक्टेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी, वी आर मोर इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी, तो जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स है उनका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है मार्केट्स के ऊपर पड़ता है। न्यूज कई बार ऐसी न्यूज आती हैं कि वहां पे ऐसी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गई, वहां पे कुछ युद्ध जो था वो और ज्यादा तेज हो गया, तो मार्केट्स के ऊपर उन चीजों का सेंटिमेंट एक आता है, एक असर होता है, मार्केट्स कई बार उसमें करेक्शन लेती हैं, लेकिन उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज अवर इकोनॉमी इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड वी आर मूविंग हेड विद द ग्रेट सपोर्ट ऑफ द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स
एंड व्हाट यू टॉक्ड अबाउट अस मूविंग अहेड एंड डूइंग वेरी वेल। The Prime Minister also today in Austria said that India's transformative progress in the last 10 years has been quite good. And he also has expressed that we are going to emerge as the third largest economy. So the fundamentals which you're talking about are good. And in the near future, we are going to be called the Viksit Bharat by 2047. So therefore, we are in the right direction.
Yes, we are in the right direction because we are moving fast, and we are the fastest moving economy among the major economies, among the G20 emerging and developing economies. And our not only the GDP, but the other fundamentals also, like the exports trajectory, despite so many headwinds, we are growing in a good number in the exports also. Last year, we posted the positive growth trajectory in the exports, right, despite so many troubles, the sea trouble and the global headwinds and the geopolitical developments, high inflation rate, high interest rate. Despite that, our growth remained intact. And current year, we will again grow in the good number. Now, this year, we are expecting that our exports will grow more than 10% on the basis of revised demand in the advanced economies and support of the reforms, that our ease of doing business is becoming more and more robust and our exporters are becoming more competitive in the international market. So fundamentals are in the right direction, as we are already at around $3.7 trillion economy by the end of March 2024. And for the current financial year, our economic size will be at around $4 trillion economy. And by 26-27, we will be $5 trillion economy and surpassing the Germany, which is $300-400 billion ahead of us right now. But we will definitely cross that number in the coming 2 or 3 years. So our economy is set to become the third largest economy, okay, and to attain the size of $7 trillion by 2030. And according to our projections, our industry estimates, we have projected that our GDP will be at around $34 trillion by 2047. So the trajectory is very, very strong, and the fundamentals are supporting significantly with the support of various reforms undertaken during the last 3-4 years, starting from the Atmanirbhar Bharat, then your PLI scheme, then the scheme supported for the ease of doing business, single window system. All these reforms are supporting and making India's growth trajectory more and more clear to move forward and to become more robust in the global ecosystem.
Okay, coming back to the markets today, it seems that the indices remain sideways today and they continue the trend of selectively picking some stocks while booking profits in the other. So is the market struggling to break out of its range due to lack of any trigger in the coming days? And do you think this trend may persist until the budget announcements on July 23?
Actually, market, it's very difficult to predict the market's vision, actually. But markets are very intelligent. They consider all the fundamentals or the growth trajectory or the forward-looking scenario, not only in India, but in the global economy. And this trend in the market indicates that all the things are smooth and markets are going to make new and new highs in the coming times also, on the back of various developments in the national and international arena. Like, why international arena? Because now the inflation trajectory is coming down. Inflation is coming down in the US, and inflation is coming down in the euro. Eurozone, they have also started reducing the interest rate. So positive developments are also happening in the international arena. Those developments are also helping the markets to remain intact and to move forward with the new trajectory and new highs. Yeah.
Dr. Sharma, we have seen the rise in FMCG stocks.
Right.
And they have been supported by improvement in rural demand, positive June quarter as well, and business updates from major FMCG players are also very positive. And the new government's focus is also on the rural economic development. In light of this, how do you foresee the FMCG sector going forward?
Future is very bright because, as you rightly said, the focus of the government is to...
And not to forget the monsoons.
Yes. And the focus of the government is to touch the grassroots levels, to support the economy from the grassroots, to make it more and more strong and strengthened in the coming times. Because our economy is 66% or 67% is the rural economy.
Right.
So now the demand trajectory is majorly happening in the rural segment, supported by the consistent growth in the agriculture sector. Like we grew more than 3% for continuously for 3, 4, 5 years, from 17, 18 to 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23. The growth was very, very strong in the agriculture sector, and exports trajectory was also becoming more and more robust. So this this sentiment and this scenario is providing a great support to the rural economy to move forward and to create more and more demand and to support the demand with so many reforms like the direct benefit transfers and the support to the downtrodden and creating such kind of social welfare schemes. All these schemes are supporting to the rural economy. That's why the demand trajectory remains intact, and that is expected to remain high in the coming times also.
SPB banking क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, क्योंकि ये दोनों ही सेक्टर काफी लाभ पहुंचाने वाले रहे हैं, और जब हम एक हाई ऑल टाइम हाई देखते हैं तब इनका रिस्पांस भी काफी अच्छा नजर आता है।
जी बिल्कुल, जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो ज्यादातर जो बजट के आसपास वो बहुत एकदम से उत्तेजित होते हैं, मैं कहूंगा अग्रसर होते हैं कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट होगी तो सबसे पहले जो है बैंकिंग स्टॉक्स में फैक्टर इन होती है, क्योंकि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो बैंक्स तो उसी लेवल पे ग्रो करेंगे। तो हम समझते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट रहेगी, रिफॉर्म्स भी इंटैक्ट रहेंगे, क्योंकि सरकार का विजन है, सरकार का विजन 1, 2, 4, 5 साल के लिए नहीं है। जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी आपने बात की कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है, तो आपकी जो सोच है, जो आपकी ट्रेजेक्ट्री है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जो आपका विजन है, दैट इज नॉट ओनली फॉर दी 1 year or 2 year or 3 year, दैट इज फॉर दी 23 years फ्रॉम नाउ गोइंग फॉरवर्ड बाई 2047। तो सरकार अभी जो रिफॉर्म्स लेके आती है, जो सरकार बजट में अनाउंस करती है या दूसरे पॉलिसी एनवायरमेंट में अनाउंस करती है, वो रिफॉर्म्स कोई 6 महीने या 1 साल या 2 साल के लिए नहीं है। दोज रिफॉर्म्स फॉर द लॉन्गर टर्म अचीवमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू बिकम मोर एंड मोर स्ट्रांग इन द ग्लोबल इकोसिस्टम एंड टू बिकम ए डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047। तो बजट भी जो आते हैं, अभी हमने देखा कि जो लास्ट बजट था, अभी इंटरिम बजट जो पेश हुआ था, उसमें जो विजन थी, दैट विजन वॉज नॉट ओनली फॉर 3 months कि ये तो इंटरिम बजट है, दिस इज ओनली फॉर द 3 months जो जून जुलाई तक रहेगा, उसका विजन भी एक लॉन्ग टर्म विजन और उसका जो फोकस था वो जैसे आपने बताया कि रूरल इकोनॉमी, जो पूरा बजट था उसका फोकस ज्ञान के ऊपर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहले बताया कि ज्ञान जो है ये एक भारत की सोच में, भारत की जो आगे प्रोग्रेस है उसका एक सेंट्रल पॉइंट बनेगा। तो ज्ञान का मतलब था कि गरीब, युवा, नारी एंड किसान, अन्नदाता, तो ये जो एंड दे आर कवरिंग मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन। तो इससे क्या है कि लॉन्ग टर्म विजन जो है वो बहुत ही एक हमें ऐसी दिशा दिखाती है कि हमारी जो रिफॉर्म्स हैं, जो हमारी पॉलिसीज हैं, अभी वो 2 साल, 4 साल या 5 साल के लिए नहीं है, वो लॉन्गर टर्म के लिए हैं। जैसे अभी पिछले साल सरकार ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेके आई, पहले वो 5 साल के लिए होती थी, अभी सरकार ने उसको ओपन एंडेड छोड़ा है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो पॉलिसी जब तक अगली अमेंडमेंट नहीं होगी तब तक वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी।
एसपी, अगर मार्केट की हम बात करें तो निफ्टी में ऊपरी स्तर पर काफी बिकवाली देखी जा रही है और मुनाफा वसूली भी हम देख रहे हैं, तो ऊपरी स्तर पर इतना बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है?
ठीक है, मुनाफा वसूली कोई गलत बात नहीं है
जी,
दैट इज ए पॉजिटिव पॉइंट, यू आर पॉजिटिव एंड यू आर बुकिंग योर प्रॉफिट, दैट इज ए पॉजिटिव थिंग, नॉट ए नेगेटिव थिंग। सो इसको हमें एक सॉलिड मूवमेंट लेना चाहिए कि लोग जो है, मुनाफा वसूली तो तभी होगी अगर उसको कुछ मुनाफा आ रहा है,
बिल्कुल,
तो तभी तो इसका मतलब लोगों को जो लाभ आ रहा है, जो मुनाफा आ रहा है, वो उसको वसूल करके एक मार्केट में कंसोलिडेशन लेके आते हैं, ये आती है। ये अभी हमने देखा कि 22,000 और 23,000 के बीच में मार्केट लगभग 5-6 महीने रही, आप अगर देखें जनवरी से लेके लगभग कोई अप्रैल मई तक जो थी मार्केट्स 22,000 और 23,000 के बीच में घूम रही थी, कभी वो 22,700, 22,800, 22,900, 23,000 के थोड़ा पास आके फिर वापस, इस तरीके से मार्केट ने बहुत अच्छे से उसको बेस बनाया, वहां पे कंसोलिडेट किया, मुनाफा वसूली भी हुई, चर्निंग भी हुई, लोगों ने एक शेयर से निकल के दूसरे में निवेश किया, दूसरे से निकल के तीसरे में किया, इस तरीके का दीज आर द मार्केट डायनामिक्स। ये कोई मतलब इसमें कुछ नेगेटिव या वो ऐसी बात नहीं है, दीज आर द मार्केट डायनामिक्स टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बुक प्रॉफिट टाइम टू टाइम एंड टू रिमेन इन्वेस्टेड इन द मार्केट।
सो इन द कमिंग डेज व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? यू थिंक दिस चर्निंग, दिस करेक्शन, दिस यो-यो इफेक्ट?
आई एम वेरी बुलिश ऑन नॉट ओनली ऑन द मार्केट्स बट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, दैट आवर इकोनॉमी हैज स्टार्टेड अ ग्रेट बुल रन फ्रॉम नाउ एंड वी विल बी अ मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम and our fundamentals will become more and more lucrative in the global charts and this is the start of the India's growth story.
और शुद्ध आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वियना में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कल ये बात कही। श्री मोदी ने भारत और ऑस्ट्रिया के द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त बनाने में भारतीय समुदाय के योगदान पर अपने विचार भी साझा किए। उन्होंने बीते 10 वर्षों में भारत के परिवर्तनकारी विकास के बारे में जानकारी दी और विश्वास व्यक्त किया कि भारत जल्द ही विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2047 तक हमारा देश विकास करके विकसित भारत हो जाएगा। भारत लगभग 8% की दर से आगे बढ़ रहा है और इसी गति से आगे बढ़ते हुए दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध ऐतिहासिक है तथा सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
So 2047, that road towards that, the vision that the Prime Minister is showing to us about the Viksit Bharat, what can we do to ensure that we march towards that Viksit Bharat?
Yes, we should participate in this growth trajectory. We should contribute our hard work, which we are already doing, and we will honestly support our work, and because this is not a story of the individual, this is the story of the 140 crore people. So everybody should be supporting this trajectory, contributing more and more in their respective work trajectories, in their respective works. So that is the, I think, great message that that will enhance the sentiments of every citizen in India to contribute and to make India a strong economy, a robust economy, and an influential economy in the world economic system.
So economic reforms and the reforms that the government has introduced will play a major role as we go along.
Yes, reforms always play a major role because reforms always provide scope the economies to expand more. If the reforms are not happening, then the economies will not be able to move forward and to become more robust. As you must have observed that during the last 10 years, almost all the parameters, fundamentals, GDP, exports, all these numbers are becoming double during the last 9-10 years. So with the support of reforms, because reforms provide clearance to the growth, the road to growth, and growth becomes more and more robust and resilient and strong to achieve its destination.
Okay, quick word from you, a word from you on the India-Australia startup bridge that is going to foster innovation and entrepreneurship. What's your take on that?
Yes, because our bilateral relations with Austria are very, very strong, and we are not the recent growth partner. We are growth partners since the last many decades. So our friendship, our trajectory, our bilateral relations will move forward with newer thoughts and to become more and more strong in the coming times with such kind of new developments.
Okay. Moving on, the Reserve Bank of India, in a notification issued yesterday, allowed resident individuals to open foreign currency account, FCA, in International Financial Services Center, IFSC, at Gift City, Gujarat, under Liberalized Remittance Scheme, LRS. The notification reads, on a review, it has been decided that authorized persons may facilitate remittances for all permissible purposes under LRS to IFSCs for availing financial services or financial products as per the International Financial Services Centre's Authority Act 2019 within IFSCs, and all current or capital account transactions in any other foreign jurisdictions other than IFSCs through an FCA held in IFSCs. Further, the notification added that authorized persons shall bring the contents of this circular to the notice of their constituents and customers. Those who are authorized by the RBI to provide forex services such as banks and specific foreign exchange dealers, as such transactions will be routed through the banking system and are called as authorized persons. A quick word for you from
yes,
you.
Yes, this is a great development, I would say, that because we are more and more financially integrated with the global economy, and because of our rising exports and rising investments and rising connectedness with the global markets. So this is a great move, and ultimately the crux is that somebody can open an account and make their fixed deposits in the dollars, actually, foreign currency also, to remain strong in the market and to settle or support their day-to-day transactions or the futuristic needs. So they can open their accounts and to make their FDs in the foreign currency dollars.
और श्रोताओं आपको बता दें, एशियाई शेयर बाजार के पांचों सूचकांकों में आज उछाल देखा गया। हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक में 2.02% की भारी बढ़त देखी गई। चीन का शंघाई कंपोजिट 1.04% की तेजी के साथ बंद हुआ। जापान का निक्केई 0.93% ऊपर आ गया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.81% लाभ में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.44% की वृद्धि हुई। यूरोपीय शेयर बाजार आज हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक जर्मनी का डेक्स 0.12% के फायदे में रहा। फ्रांस के कैक में 0.27% की बढ़ोतरी देखी गई और लंदन का फुटसी 100 0.17% लाभ में था। एसपी, बहुत ही कम शब्दों में आपके क्या विचार होंगे एशियन और यूरोपियन मार्केट के बारे में, और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फेड क्या ब्याज दरों में कटौती कर सकता है?
देखिए, विचार बहुत स्ट्रांग है, और यूरोप में जिस तरीके से इन्फ्लेशन स्लाइटली कम हुआ है और उन्होंने अपना रेट कट भी किया है, तो सेंटिमेंट्स बता रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन कल्प्रिट जो है वो अगर थोड़ा सा और सॉफ्टन हो जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बड़ा मोमेंटम बनने की बहुत जिज्ञासा है, बहुत एक सोच है, एक इंस्पिरेशन है। तो आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन और स्टेबलाइज हो और कम हो, और फेड को स्कोप मिले कि वो अपना रेट कट हो। उनके जो प्रॉमिसेज हैं कि 24 में वो रेट कट जरूर करेंगे, तो वो दैट शुड हैपन एंड दैट विल प्रोवाइड अ न्यू मोमेंटम टू द फाइनेंशियल मार्केट्स।
All three U.S. major indices witnessed rally on Wednesday as investors awaited U.S. inflation data later today. Nasdaq gained 1.18%, Dow Jones Industrial Average rose 1.09%, and S&P 500 added 1.02%. Dr. Sharma, Fed Chair Jeremy Powell, told lawmakers that more good data would build the case for rate cuts.
Now he mentioned that,
and the odds of a rate cut in September are about 75%, and we'll get the next cue from the data which I mentioned.
Yes,
which is due shortly.
Data will be more crucial to move forward. If the trajectory remains same and the inflation is softening, then there is a great scope to cut the policy rates in many economies, actually,
Brent,
including India.
Yeah, Brent and WTI crude is experiencing recovery in the global crude market today. Brent crude increased by 0.15% to $85.21 a barrel. The U.S. West Texas Intermediate is marginally up by 0.04% to $21.13 a barrel when reports last came in.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में वायदा कारोबार के लिए सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। इस कीमती धातु का वायदा मूल्य अगस्त अनुबंध के लिए 0.17% की सुस्ती के साथ 72,888 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध के लिए चांदी अंतिम समाचार मिलने तक करीब आधा प्रतिशत यानी कि 0.47% की बढ़त के साथ 93,270 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। एसपीजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू डॉक्टर शर्मा फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडेक्सेस इन मार्जिनली डाउन, सेंसेक्स क्लोजेस एट 79,897, निफ्टी सेटल्स एट 24,316. India will become the third largest economy in near future, says Prime Minister Narendra Modi. And resident individuals can open foreign currency account in International Financial Services Center under liberalized remittance scheme, says the RBI. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market.